नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 2 जुलाई 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी। कोरोना वायरस का खतरनाक डेल्टा वेरिएंट लगातार बदल रहा है रूप, अब तक 98 देशों में दी दस्तक। कोविड-19 प्रभावितों की मदद के लिए सरकारों ने किए उपाय, मगर धनी और निर्धन देशों में गहरी खाई। वैश्विक महामारी से पर्यटन क्षेत्र पर भीषण असर, $4,000 अरब के आर्थिक नुकसान की आशंका। अमेरिका और कनाडा के कई हिस्से खतरनाक और असाधारण गर्मी और ताप लहर की चपेट में। और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से अनेक फायदे, मगर इसके दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल के प्रति बरतनी होगी सतर्कता। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में दुनिया अब एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है। कोरोना वायरस के डेल्टा नामक वेरिएंट के मामले अब अनेक देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से उन देशों में हालात पर गहरी चिंता है जहाँ टीकाकरण का स्तर बहुत कम है।
द डेल्टा वेरिएंट इज डेंजरस एंड इज कंटिन्यूइंग टू इवॉल्व एंड म्यूटेट, व्हिच रिक्वायर्स कांस्टेंट इवैल्यूएशन and careful adjustment of the public health response. Delta has been detected in at least 98 countries.
महानिदेशक गेब्रेसिस कह रहे थे कि डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है और अपना रूप लगातार बदल रहा है। इसकी निरंतर समीक्षा किए जाने और जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य उपायों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। इस वेरिएंट के मामले अब तक 98 देशों में सामने आ चुके हैं और ये टीकाकरण के निम्न स्तर वाले देशों के साथ साथ उन देशों में भी तेज रफ्तार से फैल रहा है जहां बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। महानिदेशक गेब्रेसिस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देशों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट की शुरुआत की है, मगर ये भी ध्यान रखा जाना होगा कि ये प्रमाण पत्र भेदभावपूर्ण ना हो, विशेष रूप से उन देशों के खिलाफ जहां टीके या तो उपलब्ध नहीं है या फिर कुछ खास प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के लिए देशों की सरकारों ने अभूतपूर्व उपाय किए, मगर धनी और निर्धन देशों में इसका अलग अलग असर देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन।
नई रिपोर्ट बताती है कि गरीबी रेखा से नीचे जाने का जोखिम झेल रहे 1.5 करोड़ में से लगभग 1,20,00,000 लोगों की मदद कर पाने में सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक आर्थिक संकट के असर को कम कर पाना तो संभव हुआ है, मगर ऐसा मुख्यतः उच्च और ऊपरी मध्य आय वाले देशों में ही हो पाया है। धनी देशों ने सहायता के लिए प्रति व्यक्ति के स्तर पर निर्धन देशों की तुलना में 212 गुना अधिक खर्च किया है, लेकिन निम्न मध्य आय वाले देशों में ये उपाय लोगों को नए सिरे से गरीबी के गर्त में धंसने से रोक पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जबकि निम्न आय वाले देशों में तो ये बिल्कुल नाकाफी साबित हुए। विश्व भर में सामाजिक संरक्षा नीतियों में $2,900 अरब का निवेश किया गया, मगर विकासशील देशों ने महज $379 अरब ही खर्च किए हैं। उच्च आय वाले देशों ने औसतन प्रति व्यक्ति $847 आवंटित किए, जबकि निम्न और मध्य आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति $124 खर्च किए गए।
वैश्विक महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। वर्ष 2020 और 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग $4,000 अरब का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। इसकी एक वजह विकासशील देशों में व्यापक स्तर पर टीकाकरण प्रयासों के अभाव को बताया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर प्रतिष्ठा जैन।
पिछले साल पर्यटकों के आवागमन में आई तेज गिरावट के कारण $2,400 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में इस वर्ष की दूसरी छमाही में बेहतरी की उम्मीद है। इसके बावजूद 2019 के स्तर की तुलना में $1,700 अरब से लेकर $2,400 अरब के बीच का नुकसान होने की आशंका है। विकासशील देशों में पर्यटन पर महामारी का ज्यादा असर हुआ है। इन्हीं देशों में वैक्सीन वितरण में विषमता देखने को मिल रही है। UN महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक।
The report, published jointly by the UN World Tourism Organization and the UN Conference on Trade and Development, says that the tourism sector's recovery will largely depend on the uptake of COVID-19 vaccines globally.
उपप्रवक्ता फरहान हक बता रहे थे कि व्यापार एवं विकास पर यूएन सम्मेलन और विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी यह रिपोर्ट बताती है कि पर्यटन सेक्टर का उभरना बहुत हद तक कोविड-19 टीकाकरण पर निर्भर है। जिन देशों में टीकाकरण की ऊंची दर है, वहां पर्यटन सेक्टर के जल्द उभर पाने की उम्मीद है, उदाहरण के तौर पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका। मगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आवागमन को महामारी से पहले के स्तर तक लौटने में 2023 या उससे भी बाद तक का समय लग सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, मगर ये भी जरूरी है कि इस टेक्नोलॉजी के विकास और उसके इस्तेमाल के केंद्र में मानवाधिकारों और नैतिकता को रखा जाए। एक रिपोर्ट के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने सोमवार को कहा कि सभी नई टेक्नोलॉजी की तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी गलत इस्तेमाल होने की संभावना है और ये नुकसान की वजह बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से प्राप्त अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने और जोखिम सीमित करने के लिए 6 सिद्धांत पेश किए गए हैं। UN एजेंसी की नई रिपोर्ट एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ बताती है कि AI कुछ संपन्न देशों में पहले से ही इस्तेमाल की जा रही है। इसके जरिए रोग की जांच व निदान की गति और सटीकता, स्वास्थ्य देखभाल, शोध व दवाओं के विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय बेहतर बनाने में मदद मिली है। हालांकि रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि स्वास्थ्य के लिए फायदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से बचना होगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक AI से उपज रहे अवसर व जोखिम आपस में जुड़े हुए हैं। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य आंकड़ों के अनैतिक संग्रह व इस्तेमाल और एल्गोरिदम के पूर्वाग्रहों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी और साइबर सुरक्षा, मरीजों की सुरक्षा व पर्यावरण का ख्याल रखा जाना होगा।
संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव इजुमी नाकामित्सु ने आगाह किया है कि टेक्नोलॉजी के लाभ उठाते समय साइबर जगत में पनपती सुरक्षा चिंताओं और चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाना होगा। विश्व भर में 4.5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2022 तक इंटरनेट से 28 अरब से ज्यादा नेटवर्क यंत्रों के जुड़े होने का अनुमान है। निरस्त्रीकरण मामलों पर उच्च प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु ने साइबर जगत में शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में आयोजित बैठक को संबोधित किया।
As advances in digital technologies continue to revolutionize human life, we must remain vigilant in our understanding of malicious use of such technologies that could imperil the security of future generations.
उच्च प्रतिनिधि नाकामित्सु कह रही थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी के दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल के प्रति भी सतर्कता बरतनी होगी, जिससे भावी पीढ़ी के लिए खतरे पैदा हो सकते हैं। गलत जानकारी के फैलने, ऑनलाइन हिंसक चरमपंथ और तस्करी, साइबर हमलों, निजी जानकारी को चुराए जाने सहित हाल के वर्षों में ऐसी दुर्भावनापूर्ण घटनाओं की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के उभरते खतरों से निपटने के लिए ठोस उपायों की पैरवी की गई है। ओरेगॉन और वॉशिंगटन प्रांत सहित अमेरिका का पश्चिमोत्तर हिस्सा और ब्रिटिश कोलंबिया समेत कनाडा का पश्चिमी क्षेत्र एक असाधारण और खतरनाक ताप लहर की चपेट में है। ये दुनिया के वो हिस्से हैं जहां लोग आमतौर पर ठंडे मौसम के अभ्यस्त हैं। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
कनाडा में गत रविवार को ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन में अब तक का सबसे अधिक तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रवक्ता क्लेयर नूलिस ने बताया,
टेम्परेचर्स आर लाइकली टू रीच एज हाई एज अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस बाय डे फॉर परहैप्स 5 और मोर डेज, सो दैट्स यू नो वेरी लॉन्ग स्पेल।
5 या ज्यादा दिनों के लिए दिन में तापमान शायद 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए ये एक बेहद लंबी अवधि है और रातें भी बेहद गर्म होंगी। इसने पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। आमतौर पर जब कोई रिकॉर्ड टूटता है तो ये कम अंतर से होता है, इस बार ये 1.6 डिग्री सेल्सियस से टूटा है। 24 24 घंटे बाद ही सोमवार को लिटन में ये रिकॉर्ड फिर टूट गया जब 47.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यूएन मौसम एजेंसी के अनुसार तापमान का ऊंचा स्तर लोगों के स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका के सिएटल शहर में रविवार को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो अब तक का अधिकतम तापमान रहा, मगर सोमवार को ही ये रिकॉर्ड तब ध्वस्त हो गया जब तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।